శివాయా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆశ్రీమ భావత నమస్కం. దశాధ్యాయ భగవాన్ రామచంద్ర కి లీలా శ్లోక సంఖ్య 2 కా బారే మే చర్చ కరేంగే. తస్యాపి భగవానేషా సాక్షాత్ బ్రహ్మమయో హరి అంశాంశేన చతుర్భాగా పుత్రత్వం ప్రార్థిత సురై రామలక్షణ భరత శత్రుఘ్నా ఇతి సంజ్ఞయా. తస్యాపి భగవానేషా సాక్షాద్ బ్రహ్మమయో హరి అంశాంశేన చతుర్ధాగా పుత్రత్వం ప్రార్థిత సురై రామలక్షణ భర్త శత్రుఘ్నా ఇతి సంజ్ఞయా. తస్యాపి భవానేష సాక్షాద్ బ్రహ్మమయో హరిః అంశాంశేన చతుర్ధాగా పుత్రత్వం ప్రార్థిత సురై రామలక్షణ భర్త శత్రుఘ్నా ఇతి సంజ్ఞయా. తస్యాపి భవానేష సాక్షాద్ బ్రహ్మమయో హరి అంశాంశేన చతుర్ధాగా పుత్రత్వం ప్రార్థిత సురై రామలక్షణ భర్త రామలక్షణ భరత శత్రుఘ్నా ఇతి సంజ్ఞయా. తస్యాపి భవానేషామయో హరి అంశాంశేన చతుర్భాగాత్వం ప్రాప్త స్థిరై రామలక్షణ భరత శత్రుఘ్నా ఇతి సంజ్ఞయా. महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान ईशा ये सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परब्रह्म या परमात्म सत्य हरि ही भगवान अंशांशेना पूर्ण अंश के अंश से है देवताओं के द्वारा, राम भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण लक्ष्मण, भरत भरत, शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न, इति इस प्रकार संज्ञा विभिन्न नामों से देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तदांशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। इनके पावन नाम से राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न के सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव देवतत्व न होकर विष्णु तत्व है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनाज अनंत रूपम, यद्यपि ये सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पांचवा अध्याय का 40 श्लोक में पुष्टि की गई, रामादि मूर्ति कला अनुमति नियमेन तिष्ठन, भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ज्ञान चिंद्रांध्य ज्ञानांजन शलाकयाचोन्मीलित तस्म श्रीगुरव मुखम करोति वाचालं बंधम लंघयते श्रीगुरुन कारणं परमानंदमाधव श्रीचैतन्यमेश्वर श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामेयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथानुपं संसदीयम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनाललिता श्रीविशाखालिपं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशकारिणी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तार्थं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तत्त्वकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवत्नाभीष्टदोहं हेतास्वदं सुमुहुरं किमतां शरण्यां भूत्यार्चमं प्रणतपालभवाब्धिकोटं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामाशरणं समस्तजगतं रामं विना कागते रामेणा प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कायन्नमा। रामास्त्रासति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वमसि रामी भक्तिरखण्डिता भवति रामी त्वमेवाश्रया। कल्पतरुभ्यश्चाकृवासिनीभिर्देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्रीकृष्णचैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तम्। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तजनों के हरे कृष्णा। आज श्री राम का रामनवमी आने वाला है, इसलिए कल भी परम पूज्य राजा रमण सर महाराज द्वारा राम कथा सुन रहे थे। रामायण बहुत विस्तृत है, 24,000 श्लोकों में है। इसलिए परिचित महाराज के सुखदेव को समय में 24,000 श्लोकों बताने से फिर और भी बहुत चाहिए 7 दिन का निर्माण। इसलिए बोलते हैं कि सूर्यवंश के बारे में, केवल सूर्यवंश के बारे में बताना है तो सैकड़ों वर्ष जाइए। नौवां अध्याय शुरू में बताते हैं कि यदि सूर्य वंश के विस्तार के बारे में बताएंगे सैकड़ों वर्ष के साथ, इसलिए अब समय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। यहाँ पर भी क्योंकि पहले रामायण हमेशा सभी राजा सुनते थे, इसका 10वां 11वां अध्याय में सुन सकते हैं। 11वां अध्याय में पूरा रामायण कथा बताने के बाद बता रहे हैं कि यस्यामलं विवसदस्य यशोधुनापि रायं जगद्न ऋषयो जगदेन्द्रपत्तं कन्नाकपालवसुपालकीटयुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये यस्यामलं विवसदस्य यशोधुनापि। अर्थ है कि ये इससे पहले अवश्य जी जन्मे जय महाराज तक, परिचित महाराज के पीछे जन्मे जय महाराज तक भी अवश्य राजसभा शुरू होने से पहले रामायण कथा अवश्य सुनते थे। रामायण कथा जब सुनेंगे रामायण को समझेंगे एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। जब तक अच्छा मनुष्य नहीं बनेंगे भक्त कैसे बनेंगे। इसलिए 7वां स्कंध में 11वां अध्याय में 5 से लेकर 12 श्लोक तक, 5 श्लोकों में नारद महर्षि मनुष्य का 30 गुण बता देते हैं। वो 30 गुण भक्तों का चेतन महाप्रभु जो 36 गुण बताते हैं, चेतन चरितामृत में भक्तों के 36 गुण इसमें शामिल हो जाता है। मनुष्य मात्र के लिए यदि मनुष्य होना है 30 गुणा होना अनिवार्य है, और उसमें से क्रूर स्वभाव के लिए मनुष्य के लोग के लिए कोई स्थान नहीं है। रामायण के मेन उद्देश्य भगवान श्री राम का अवतार होने के उद्देश्य ही है। उसमें से मुख्य उद्देश्य है कि जो मनुष्य जीवन में नृशंस का क्रूरत्व स्वभाव आ रहा, जिस समय देखते हैं कि रावण वगैरह जैसे क्रूर स्वभाव वाले थे, ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया, उसके पिताजी ब्रह्मर्ष थे, विश्रवा साधारण नहीं है, परंतु अहंकार से वर प्राप्त करने के अहंकार के बाद जो है भगवान का प्रवृत्त स्वीकार नहीं किया, इसलिए असुर कहा गया, और उसमें क्रूर स्वभाव आ गया। रामायण का भगवान श्री राम का मुख्य उद्देश्य अवतार का कि मनुष्य मात्र जो है, जो देवता भी नहीं कर सकते वो मनुष्य मात्र भी अपना धर्म का अनुसरण करने से कर सकता है। मनुष्य में इतना शक्ति है कि देवताओं से भी दुर्लभ वो कार्य मनुष्य कर सकते हैं, उसे भी करना चाहते हैं। और कई का विश्वास है कि रावण को संहार करने के लिए श्री राम का भगवान अवतार लिया है। तथ्य भी है, तथ्य नहीं भी है। भगवान का प्रथम अवतार का मुख्य कारण होता है भक्तों का आनंद देना। भगवान भगवीता में क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधु नाम निराशाय के दुष्कृतम, जिसके इच्छा मात्र से विश्व सृजन होता है, विश्व इच्छा मात्र विश्व का संहार भी हो जाता है, उनके लिए जीव मात्र के संहार करने के लिए स्वयं को आना पड़ेगा। उनके पास इतना शक्ति है। इसलिए सुंदरकांड में जब विभीषण सोनागत के लिए आ जाता अपना मंत्री के समय, और अंदर जाकर बक्सूचना देते हैं, ऐसा विभीषण रावण का भाई आया हुआ है आपके शयन होने के लिए, क्या करना चाहिए। भगवान श्री राम तुरंत अपना मीटिंग बुलाते हैं सुग्रीव जामवन नंद हनुमान श्री राम श्री लक्ष्मण के सभी के साथ मंत्रण काम के लिए सभी अपना अपना मंत्रण दिया है। हनुमान जी नहीं बोलते कुछ भी, सबका सब एक मत था कि इसको बंदी बनाओ। सुग्रीव तो बोलते हैं अभी तुरंत बंदी बनाना चाहिए, युद्ध के पश्चात हम देखेंगे उसको क्या सजा देना चाहिए। अब राजा है बोल दिया, अब सबको सुन रहे हैं। आप सुनने के बाद जो है कर्ण महर्षि का एक योगदान दे देते हैं, ये बताते हैं कर्ण महर्षि इसलिए है कि यदि जो शरणागत होकर आते हैं और शक्तिमान होते हुए उसको शरणागत नहीं देते हैं उसको पुण्य संपूर्ण पुण्य फल सब नष्ट हो जाता है। उसको उदाहरण देते और भगवान श्री राम बोलते मैं उनको शरण देने के लिए तैयार हूं। सुग्रीव मन में भी सोचते हैं कि अभी अपना युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, अभी अपना मनमानी कर रहे हैं, अभी अपना इच्छा शरण देना ही था, सबके लिए मंत्राणा के लिए क्यों बुलाया, तो सब कन्विस्ट है ना। पहले निश्चित किया कि इसे मैं शरण प्रदान करूंगा और मंत्राणा भी किया, सभी अपना अपना व्यक्तिगत भाव भी बता दिया, अभी अपना बोल रहे हैं युद्ध में सभी मारा जाएंगे शायद फायदा ऐसे तो अच्छा रहेगा। बाप मन नहीं कोई बोलता नहीं, लेकिन मन का श्री विदार में भगवान श्री राम का सर्वंतरियाम है, इसलिए तुरंत बोलते हैं कि भगवान श्री राम प्रकृति रूप में बोलते हैं कि जितने भी विश्व में पिशाच राक्षस जितने भी दुष्कर्मी है सभी के लिए मैं उंगली का अग्रभाग दिखाने से समस्त सभी विश्व में ब्रह्मांड में जितने सब समस्त नष्ट हो जाएंगे। मैं बाण भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उंगली का अग्रभाग दिखाने से मात्र होते हैं। तुरंत जो है सोचा कि मैं मन में सोच रहा था उनको कैसा पता चला, तो भगवान तो सर्वंतरिया है, किसके मन में क्या चल रहा सभी मालूम होता है। कहने का अर्थ है कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं इस उंगली का अग्रभाग दिखाने से समस्त पिशाच राक्षस जितने भी क्रूर कर्मी है सभी नष्ट हो जाएगा। ऐसे भगवान के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं, परंतु उनके लीला से भक्ति को आनंद आ जाता है। भक्तों का संरक्षण, भक्तों का पालन, भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का प्रथम कारण होता है। चलो आए हैं, चलो आए तो दोबारा साथ साथ रावण की भी संहार करेंगे। जैसा हम ऑफिस से जा रहे हैं, ये काम करने वाले हैं, अब जाते थे चलो घर में कुछ सामान चाहिए, अब नहीं नहीं सामान लेने के लिए पहले घर जाऊंगा फिर ऑफिस शॉप पर जाकर लेकर आऊंगा, ऐसा करेंगे। बुद्धिमान तो वही करेंगे भाई, रास्ते में शॉप जाए जैसे वो भी खरीद कर चलते हैं, वही चित्र होता है ना, कहने के अनुसार घर जाएंगे फिर आकर रास्ता में वही रास्ता में आकर शॉपिंग करके जाए। इसी प्रकार भगवान भी जब भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेते हैं, चलो आए हैं साथ साथ भक्तों का और भी आनंद हो जाएगा, विश्वास भी हो जाएगा, भगवान जो है दिनों अच्छा लाए भक्तों अच्छा लाए, इसलिए वो रावण को भी संहार करके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर बताते हैं कि सुग्रीव को संबोधन में तस्या भी भगवान इस साक्षात ब्रह्ममय है। वाल्मीकि रामायण में सीधा रामजन्म के बारे में साक्षात ब्रह्म बोला नहीं है, परंतु अन्यत्र आ जाते उसमें युद्ध का समाप्त होने पर ये समस्त देवता आकर भगवान को श्री राम को स्तुति करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा भी आते हैं, ब्रह्मा भी आकर अपनी स्थिति में बताते हैं कि क्योंकि अभी तक राम भगवान श्री राम का जन्म का रहस्य सभी को मालूम नहीं था, कुछ उनको था कि ये साक्षात ब्रह्मा, जैसे विश्वामित्र महर्षि है वशिष्ठ महर्षि, उनको मालूम है साक्षात ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ये सभी का मालूम नहीं था। लेकिन उस प्रकट कर लेते हैं, उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करके बोलते हैं ना, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति वदार्थम रावण से हम प्रविष्टो मन दे दिखाने में आता है। बोलते आप जो भगवती सीता है साक्षात लक्ष्मी है, आप जो है साक्षात विष्णु है, भगवान है, और केवल मनुष्य शरीर धारण किया क्योंकि राक्षस रावण को वध करने के लिए। रावण के इतना वरदान था ब्रह्मा द्वारा, और शिव जी भी बहुत सारे वरदान दिए हैं कि किसी देवता यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व पाताल लोकवासी और किसी दिव्यास्त्र से उसका मृत्यु नहीं हो सकता। उस वरदान में वो सोचा कि वानर और नर जो तुच्छ है, इनको तो हमारा राक्षस ही पकड़ कर खा लेंगे, क्या है राक्षस मनुष्य को ये मानता है, मैं राक्षस से ही तो कुछ है, हमारे पैर पता लेकर गिर जाएंगे, इसलिए उन दोनों को छोड़ दिया है कि इनको तो भय है नहीं, पाताल लोक में बड़ा भयानक सर्प है, उनका शक्ति बहुत है, देवताओं को भी शक्ति है, इसलिए उनसे अभय होना चाहते थे। और ब्रह्मा जी कथा सुनी किया है, इसलिए जब देवताओं के ऊपर युद्ध करने गए ब्रह्मा के वरदान से उच्च हो गया। जब यमराज से भी युद्ध में यमराज भी हारने वाला था, भी क्रोध ना कर अब यमदंड उठाते हैं कि रावण को मारने के लिए। यमदंड उठाने के बाद जो है अब यमदंड तो उसको कोई विरोध नहीं कर सकता, काल है। तुरंत वहां ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं यमराज तुम यमदंड प्रयोग कर रहे हो, और यो मेरा यमदंड प्रयोग करने से रावण का वध हो जाएगा, लेकिन मेरा वरदंड क्या होगा, नहीं लोग उनको वरदान दिया थे किसी देवता द्वारा तो इसका वध नहीं हो सकता, और तुम तो यमदंड प्रयोग करने वाले, इसलिए इसको नहीं करना। और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए महाराज जी उसका हार स्वीकार कर लेते हैं, बहुत बहुत शक्तिशाली था। तो ऐसी शक्तिशाली भगवान रावण को हराने के लिए भगवान लीला करते करते उसको रावण के लिए संहार करते हैं। भगवान रामचंद्र तथा उनके लभाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रु ये सभी जीव तत्व नहीं विष्णु तत्व है, अन्य तरह कहीं वैष्णव बोल कैसे लेकिन भी चतुर्भांश का बोलते हैं कि ये भगवान का चतुर्थ रूप है, वासुदेव संकर्षण प्रज्ञ अनुरुद्ध का जो प्रपाल लिखते हैं कि सभी विष्णु तत्व है, इतना तो हमशाम सेन लिखा है, इसलिए जैसा बौद्ध गीता में धर्म संहिता में भी ये दिया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान जो है अद्वैत होते ही अनंत अनन्य रूपों से प्रकट होते हैं। चैतन्य चरितम से भी ये कहते हैं और चैतन्य महाप्रभु भगवान के विविध अवतारों का सनातन को समझाते हैं, कितना अवतार है, केवल मनवंतर अवतारों की यदि गिनती करे तो ब्रह्मा के एक दिन में 5 लाख से ज्यादा अवतार होते हैं, केवल मनवंतर अवतार, और लीला अवतार है, युवा अवतार है, शक्ति आयुष अवतार है, गुणा अवतार है, सभी इतना अवतार है भगवान का, अनंत भगवान का। तो भगवान तो इसलिए बोलते हैं कि लीला रामादिभूषण कला निर्णय कृष्ण नाना अवतार न करो भूमिश किंतु कृष्ण स्वयं संभव भगवान। कई दफा तेरी चर्चा होता है कि श्री राम जो है भगवान कृष्ण से शक्ति कम है, कई आचार्य भी होते हैं कि इसका इस प्रकार का विष्णु तत्व के विष्णु तत्व का शक्ति कम है, इस विष्णु तत्व का शक्ति ज्यादा है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना वैष्णव के लिए उचित नहीं है। जैसे फर्ज करो आपके पास जो है राइफल है, गन है, और पिस्टल भी है, आपके पास बम भी है, ग्रेनेड है, एक छोटा सा लाठी भी है, और यहां से एक सर्प अंदर आ गया, किसको प्रयोग करोगे, लाठी मारोगे, बंदूक से तो नहीं चलाओगे ना, बम तो नहीं करोगे ना, सब शायद आप होते भी उतना ही प्रयोग करेंगे उसको मारने के लिए जितनी शक्ति का आवश्यकता है। इस प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं उनके पास समस्त शक्ति होती है, लेकिन उस अवतार को पूर्ण करने के लिए जितना शक्ति प्रयोग करने का आवश्यकता है उतने शक्ति प्रयोग करते हैं। इसलिए किसी वैष्णव अवतार को हम छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान राम ही पूर्ण शक्तिमान है, यदि जो अवसर होता है सभी शक्ति और प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नहीं है। पांच स्कंद 19 अध्याय में गुरुजी का वर्णन करते हुए किसी व्याख्यान से लोकपाल लिखने की भगवान को प्रसन्न करना तो सबसे सुलभ ढंग से प्रसन्न करते होते हैं श्री राम को, क्योंकि भगवान के चित्र रूप में अवतार लिया है। किसी अवतार में राजा नहीं बना, महाराज बने क्योंकि पूर्ण विष्णु तत्व नहीं था, शक्ति आवेश अवतार है। और क्षेत्रीय धर्म क्षेत्रीय राजा होने से क्षेत्रीय क्या करते हैं, आप उनको थोड़ा भी सेवा करें वो बहुत बड़ा मानेंगे, क्षेत्रीय का गुण है, क्योंकि क्षेत्रीय किसी से सेवा लेता नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, उनके लिए वर्जित है। लेकिन यदि कोई थोड़ा भी सेवा करे वो बहुत बड़ा मानते हैं। हम इस कृपाल से व्याख्या में लिखते हैं कि भगवान जो है बता रहे हैं कि कितना कृपालु है, वानर और भालू के लिए भी उनका सेवा स्वीकार किया, उनको भी भक्ति प्रदान किया है। ऐसे भगवान श्री राम को थोड़ा भी सेवा करें हम और प्रसन्न होकर हमारे को जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यस्ती रूपों में विद्यमान है और ये समान शक्तिशाली अनेक जीवों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं को प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। भगवान जो किसके घर में अवतार लेते, किसके दर्शन दीदी कहाँ दर्शन देते हैं, कोई बंधन नहीं है। भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वतंत्र है। यदि कोई सोचे कि हम तपस्या करने से भगवान का दर्शन होगा, विश्वामित्र महाराज जो है घर बार छोड़ के तपस्या करते, 80,000 वर्ष तपस्या किया तभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का अवश्य दर्शन हुआ था लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और भगवान का दर्शन करने के लिए किधर आना पड़ा उनको, अयोध्या में आना पड़ा ना। घर बार छोड़कर जंगल में गया, तपस्या किया, लेकिन भगवान को दर्शन करने के लिए अयोध्या में आना पड़ा दशरथ महाराज के घर में। दशरथ महाराज कोई तपस्या नहीं किया, परिवार समित रहा, धर्म के साथ चलता रहा, लेकिन भगवान अगर उनको अवतार कहने का ये नहीं कि ग्रस्त होने के भगवान का प्रकट हो गया था, वो भी नहीं है। ऐसे हरेक ग्रस्त ही घर में भगवान प्रकट होना था, वो भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि भगवान स्वतंत्र है, भगवान कहाँ किसको प्रकट होंगे, किसकी कृपा करेंगे, कोई उनके बंधन में कोई नियम नहीं बता सकते हैं। भगवान हमारे ऊपर इसलिए कृपा करते हैं कि हम ऐसा भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के है, परंतु उसके कारण भगवान हमारे ऊपर कृपा करें कोई भी कारण नहीं। भगवान स्वतंत्र हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, और भगवान का प्राकट के लिए जरूरी है। आचार्यों को कहीं मैं सुना था कि तत्व रूप से सोचना चाहिए, जो भी भगवान का कथा है, भगवत में है, रामायण है, कोई भी है, उनको हर एक लीला में हमारा कुछ संदेश देते हैं। इसलिए रामायण कांति में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवणं उपधारयन् आनुशंस परो राजन् कर्म बन्धय मुच्यते। भगवान श्री रामचंद्र का कथा सुनकर क्या करना, सुनना कथा सुनना चाहिए बस इतने, आगे क्या करना हो गया। लेकिन कहते हैं उपधारयन् सुनने का जो विधि तभी पूरा होगा, हम सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निरभ्यास करना हो तभी श्रवण के लिए पूरा है। सुनवन गुणन संसुतियंत चिंतन नामान रूपान का मंगलान मिला से मिलते हैं। क्रियाशील चरणारविंदो अष्टचेतान भवे। तो भगवान के लीलामय कथाओं को हम सुनेंगे, उसके बाद स्मरण भी करना और चिंतन भी करना, इन तरीके को हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते तो थोड़ा चिंतन करना चाहिए, स्मरण। फिर उसके बाद है उपधारण, हम अपने जीवन में अमल करना, जब तब जाकर हमारे में परिवर्तन आएगा। कथा सुन लिया हमारे जीवन में अमल नहीं करेंगे तो कथा कथाई हो जाएगा, और दूसरों के लिए नहीं। वो हमारे अवश्य भगवान को कथा सुनने से इंद्रियों का शुद्धिकरण अवश्य होता है, लेकिन हम प्रयास करने के उसका संदेश को हमारे जीवन में अमल करना। इसलिए सुखदेव गोस्वाम बोलते श्रवण ही उपधार या जब हम उपधारण करेंगे, अवलंबन करेंगे संदेश को, तब जाकर जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य लक्षण है, वो आनुषम से पड़ेगा, पूर्व स्वभाव से जाएगा। जब पूर्व स्वभाव मनुष्य में थोड़ा देश पूर्व स्वभाव देश स्वभाव आ जाता है, इसलिए काम पूजन लोगों में मदन शरीर से अहंकार से आ जाता है। जब हमारे पास अहंकार जैसे बढ़ते रहेगा, देश भाव भी अपने बढ़ते रहेगा, देश भाव बढ़ते रहेगा, पूर्व स्वभाव भी बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ा भाई अहंकार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वीर स्वरूप हो कृष्णे का नित्य दास। तो वो दास स्वभाव जाना, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, ये भावना तो जानना, उस भाव में स्थित भी होना चाहिए। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस भाव में स्थित होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन हमारे थोड़ा भी मच्छर कर दे थोड़ा मच्छर और मच्छर जाना लगभग नहीं, उस भाव में स्थित होना भी जरूरी है, सब जाकर हमारा कोई लाभ हो। इसलिए भगवान को कोई भी कथा है, कोई भी संदेह सुनकर उसमें हमारे को क्या संदेह हुए हैं। तो रामायण में भी भगवान हर लीला में बहुत सारे संदेश हमारे दे रहे हैं। उनको प्राकट से लेकर देखिए, आप चारों भाई के होंगे, दूसरे भाई के कैसा संबंध होना चाहिए, किस प्रकार निष्ठा व समर्पण होना चाहिए बड़ा भाई के साथ। उसमें भगवान का बारे में वाल्मीकि रामायण में बताते बताते नामकरण में आ जाता है। जन्म के बाद नामकरण समय में वशिष्ठ महर्षि श्री राम का अपना गोद में लेकर नामकरण देना चाहते, देखते देखते उसमें लिखते वशिष्ठा परम प्रीत। परम प्रीत प्रीत तो है, परम प्रीत क्यों हुआ, राम श्री राम के गोद में लिया नामकरण के, लेकिन इतना परम प्रीत के क्या कारण है। नामकरण पे देखे ना, नामकरण में उसे परम प्रीत से क्या है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी जब सभी अपना मानस पुत्र नव महर्षि जन्म गए, तो सप्तर्षि सभी मानस पुत्र है, इक्ष्वाकुवंश का पुरोहित के लिए युद्ध करना चाहा। इक्ष्वाकुराज को बोलते हैं कि सभी का धर्म कार्य करो, लेकिन धर्म कार्य करने के लिए पुरोहित के बिना कोई धर्म कार्य नहीं कर सकता। धर्म कार्य कर लिया हमारा पुरोहित कौन होना है। ब्रह्मा जी सभी अपने पुत्रों के तरफ देख रहे, किसको देखते देखते वशिष्ठ महर्षि की तरफ दिया हथियार उधर दिया। वशिष्ठ महर्षि पहले तो बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी उनके तरफ देखने लगा तो चिंतित होने लगा, मुख में जो प्रसन्न था। उससे पहले सभी बोले कि आप जिसको आते देंगे वही इक्ष्वाकुवंश का पुरोहित बन जाएगा। पहले तो सभी प्रसन्न से बोला है, तो सब सुशील मेरे को नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो वशिष्ठ महर्षि के तरफ देखकर उधर रुक गया, वशिष्ठ महर्षि में जो प्रसन्न था तो प्रसन्न रह गया। ब्रह्मा जी पूछते हैं वशिष्ठ, पहले के बारे में जो प्रसन्नता था अभी नहीं है, कारण क्या है। वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी का काम द्वारा प्रकट हुआ था, इसलिए दूसरे ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म जैसा शक्ति था। वशिष्ठ महर्षि बोलते हैं आप तो कृपा से भाई इतना लोगों तो भला है, लेकिन पौरोहित जो है निंदाजनक है। पौरोहित करना कोई अच्छा नहीं मानता, आजकल तो बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि बहुत पैसा मिलता है उसमें। पहले ब्राह्मण पैसे का लालच नहीं रखते थे, कर्म करना उनका कर्तव्य है, कोई कौन कितना दक्षिणा दे रहा लक्ष्मी दे रहा उसको कभी ध्यान देते ही नहीं थे। आजकल तो लक्ष्मी के बढ़ जा रहा है ध्यान, कितना धन देते हैं। तो पौरोहित जो है निंदा का है तो निंद तो मैं करना नहीं, लेकिन आप आगे इससे धीरे धीरे मरा तो अभी तक साधना किया था धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। नवाजी बोलते हैं कि जिस परब्रह्म को पाने के लिए तुम इतना दूर तपस्या कर रहे हो, अब जब यदि भगवान कृपा करके तुम्हारे दर्शन भी दे दिया क्षण के लिए ना, दो घंटा तीन घंटा तुम भगवान दर्शन दे देंगे, ये नहीं की बात करते रहो, ऐसे तो नहीं, कुछ मिनटों में दर्शन देगा। और इतना घोर तपस्या हजारों लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद यदि आपको भाग्य में है भगवान कुमार को दर्शन लेंगे कुछ मिनटों के लिए, वो अच्छा मानते हो। ये पौरोहित्य करते करते तुम्हारे कैसे केवल भगवान का दर्शन ही नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारे गोद में लेकर घूम सकते हो, तुम मुझे शिक्षा प्रदान कर सकते हो, उनके हरेक लीला में तुम भाग बन जाओगे, वो अच्छा है। उनके जीवन पर्यंत तुम उसके साथ ही रहोगे, निरंतर उस पर गोद में देखते रहोगे, दर्शन करते रहोगे, कौन समय अच्छा है। हम वशिष्ठ महर्षि बोलते हैं कि भगवान यदि पौरोहित्य से करने से मेरे को सब सौभाग्य मिलता है तो मैं पौरोहित्य स्वीकार करता हूँ। तो ये संवाद जो है भगवान जब श्री राम को अपना गोद में लेकर नामकरण संस्कार करने नामकरण दे कर रहे हैं, वशिष्ठ महर्षि को सभी स्मरण आ गया, इसलिए वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम पिता। तो इस प्रकार जो है भगवान का नाम का राम का नाम देते हैं, राम के शब्द तो छोटे ही है, वशिष्ठ महाराज बोलते हैं बहुत छोटा नाम है। वशिष्ठ महाराज समझाते हैं कि नाम तो छोटा है लेकिन इनका तो नाम महत्व जो है बहुत बड़ा है। इसी प्रकार फिर जब लक्ष्मण का नाम देते हैं उसमें बहुत अच्छा लक्षणा लक्ष्मी वर्धना, दो श्लोक में दो श्लोक में लक्ष्मण के गुण के बारे में बता देते हैं। लक्ष्मणा लक्ष्मी संपन्ना अर्थ है क्या हुआ, लक्ष्मी संपन्ना का धन प्राप्त हो ना, क्या लक्ष्मण का जो काम है क्या मानते हैं उसकी पूजा करने से हमारे धन मिलेगा। तो लक्ष्मण क्या है, गुरु तत्व है, आचार्य तत्व, आदि गुरु बलराम जी है हा? तो आचार्य तत्व है, इसलिए लक्ष्मी संपन्न है। भक्तों के लिए लक्ष्मी क्या है, संपत्त नारायण स्मृति, भगवान श्री नारायण को कृष्ण का स्मृति भी भक्तों के लिए संपत्ति है, तो ये लक्ष्मी है। तो आचार्य गुरु तत्व होते हुए लक्ष्मण जो है भक्तों के लिए भक्ति वर्धन करते हैं, इसलिए लक्ष्मी वर्धना लक्ष्मी संपन्न बोलते दिखता है। तो ये तो चाहे इसलिए आपसे देखें, गुरु हमेशा चाहते हैं कि हम अपना भगवान के सेवा में और भी ज्यादा करते आगे बढ़े। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम कम करना चाहते हैं, बोल देंगे सहजाना सात दिन दो मार्ल मंगल आराधना करिए सेवा करो, हमसे उसे सात दिन से बहुत ज्यादा ये छह दिन करेंगे, बहुत ज्यादा करते हैं तो बाद सेवा में तो अगर सेवा पूरा भी करें उसको तेसर तौर संक्षिप्त रूप से पूरा करें सात दिन, लेकिन उसे थोड़ा जल्दी करके निकले। भगवान श्री राम जब वनवास में थे रात में सोने के बाद है, जब भगवान श्री राम और भगवती सीता माता सो रहे हैं, उनको रक्षा के लिए कोई जरूरत है क्या, जब भगवान स्वयं उधर है देवता नहीं रहेंगे उधर, अदृश्य रूप से समस्त देवता भी विराजमान रहेंगे। जब राजा कहीं जाता तो राजा के साथ अपना सैनिक सभी साथ ही रहेंगे, देवता भी उधर निरंतर उधर रक्षा के लिए रहेंगे, तो भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। और लक्ष्मण का रात भर जाकर उसे पहरा देना क्या जरूरी था, दर्शन के सोचते हैं कि दिन भर तो मैं बहुत श्री राम जी का सेवा कर रहा हूँ, रात में तो सोते ही समय विधा करना है, इसलिए रात भर की सेवा करना पड़ता है। वो सेवा कर क्या करते हैं, धनुष मान लेकर पहरा दे रहे हैं। तो आचार्य चाहते हैं कि सेवा और ज्यादा से ज्यादा करें। इस प्रकार जो है लक्षण का होने से वाल्मीकि महर्षि के दो शब्दों में उसको बता देते हैं, लक्षणा लक्षण होता है। वहां पर वशिष्ठ महर्षि बोलते हैं ऐसे चारों भाई में बहुत प्रेम है, परंतु राम और लक्ष्मण के बीच में बहुत ऐसा प्रेम है इस प्रकार जो है भरत और शत्रुघ्न के बीच में। वाल्मीकि रामायण में दो श्लोक में बता चुके इस प्रकार का प्रेम है। श्रीराम बोलते हैं कि राम जो लक्ष्मण जो है मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ से बिना हम कोई काम कर सकते हैं, भजन भी करना दाहिना हाथ से, धनुष बाण भी चलाना तो दाहिना हाथ से बिना काम नहीं कर सकता। अभी माता कौशल ये बोलते बेटे मिठाई का बोलते लक्ष्मण की तरह, सोना भी सोने की तरह है सो जाओ बोलते लक्ष्मण की तरह। अर्थ है कि लक्ष्मण के बिना भगवान श्री राम कोई कार्य नहीं करते थे। दो श्लोक में वाल्मीकि महर्षि बता देते हैं इतना गहरा संबंध इस प्रकार इसी प्रकार जो है भरत और शत्रुघ्न के बीच में दिया। तो रामायण में सभी का कथा में तो विशेष मिल जाएगा, और तो राम श्री राम जी का श्री लक्ष्मण जी श्री भरत श्री शत्रुघ्न अलग अलग पक्ष है, सभी का परम सत्य है कि भगवान श्री राम का नाम के ही शब्द का आनंद स्वरूप है। रमन के दिनानंद आनंद सुधार्थनी श्री राम प्रधानी शिखर ब्रह्म विदिये थे। हमारे हम लोगों को जो नाम देगा तो हमारा नाम का हमारा गुण का कोई संबंध नहीं है क्या है? कोई का नाम अन्नपूर्ण होगा लेकिन भिक्षा मांग रहा होगा, मेरा नाम राम गोविंद ना तो राम होना गोविंद हो एक नाम दिलाने के लिए, लेकिन भगवान का हर एक नाम उनके गुण को व्यक्तित कर देता है। भगवान को जो गुण है उनके गुण से लेकर एक नाम आ जाता बस। कृष्ण सभी का आकर्षण करते हैं, कृष्ण आ गया इंद्रियों का आनंद देते गोवों को इंद्र है इसलिए गोविंद देते हैं। हरिवर्धन पर्व को उठा दिया गिरधारी हो गया और भगवान सभी भक्तों को आनंद प्रदान परमानंद प्रदान करते हैं इसलिए राम कहा गया। भगवान के जितने भी नाम देखे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़ो हर एक नाम का अर्थ है, अर्थ है कि भगवान के जो भी नाम है उनके जो नाम उनका गुण व्यक्त कर देता है हमारे लिए। तो हर एक नाम के लिए वैसे लक्षण है, लक्षण का कई अर्थ आ जाता है, समस्त गुण होना चाहिए लक्ष्मण का समस्त गुण है, लक्षणा लक्ष्मी वर्धना भी है और भरत का है भरण पोषण करने वाले हैं और शत्रुघ्न जी का है रिपोर्ट का उसको दूसरा नाम रिपोर्ट दमन भी है शत्रुओं को नाश करने वाला। कभी शत्रुघ्न का भी युद्ध किया था पूरा रामायण में कहीं नहीं आता, एक ही सर्वाधि में आ जाता कि जो किसको मारा था लवाना से जो उसके अलावा और कोई युद्ध किया नहीं है। और बचपन में उसका नामकरण करते हुए बोलते हैं कि ये तो इनका नाम सुनकर जो है शत्रु दावा लाते हैं, तो कभी नाम दिया नहीं उसको, तो हमेशा भरत महाराज के पीछे भाई भाई बोल के ढूंढते रहता था उसको शत्रु। वो शत्रुघ्न महाराज का ये नाम है कि आचार्य कहते हैं ऐसे शत्रुघ्न महाराज ऐसे बाहर का क्षेत्र तो हमें मालूम है ना, देख सकते हैं हमारा हमने बाहर का क्षेत्र कौन कौन है, अंदरूनी क्षेत्र को कौन देखेगा, अंदरूनी क्षेत्र जब शत्रुघ्न का स्मरण करेंगे हम उनका अनुसरण करेंगे हमारा अंदरूनी क्षेत्र है काम करेंगे लोग मधुमा शरीर में चल जाएगा। इसके लिए श्रीमदाचार कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम विद्यंतस्थ अभद्रान विघ्नो श्रीषदाम। इस प्रकार ये चारों भाई का नाम का तत्व है, चारों भाई का नाम का भी अर्थ हम भी हमारे भक्त सुन रहे थे। तो भगवान का अवतार का रामायण रामावतार का बड़ा विशेष है, सबसे कृपालु है। और कोई भगवान को अपने पूरा अवतार में कभी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया, जो भी किया है ऐसा कार्य किया है कि मानव नहीं कर सकते हैं, हम केवल भगवान कर सकते हैं ऐसा है। लेकिन भगवान कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मनुष्य होकर दिखाना चाहते कि जो भगवत्ता से भी नहीं हो सकता हो कर सकता है। अंत में जैसा रावण संवाद राजवाक्षा उसके बाद जो है कुछ प्रसंग में भगवान व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अन्यथा कहीं भी अपना आचरण में भगवत्ता को नहीं दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण का बचपन से जब से जन्म हुआ तो प्रकट हुआ तभी से लेकर अपना भगवत्ता दिखा रहे हैं, पूतना वर्ष से लेकर एक महीना भी नहीं था पूतना भी वध कर दिया। हर क्षण बता रहे हैं कि मुझे साधारण नहीं समझो, मैं भगवान हूँ। परंतु श्री राम का अवतार में वो नहीं कभी नहीं किया। विशेष है कि भगवान श्री राम का अवतार का कृपाल अवतार है, सबसे कृपावान है। तो चार श्लोक में पहले दो एक ही श्लोक में पूरा रामायण पूरा कर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। बाद में सुनिए गुरुवार के तिक्त राजो विचर जनवनम पद्म पद्धाम मैया निष्कर्षा क्षमाभ्याम विदिपतरिदेवरिष्टम हरिंद्रानुगाभ्यम वैविध्या शोकनख्यात भूवृजुंग स्वस्थाभ्युदेतुदहना कौशलेन्द्रो वतन्ना। बस इतने में पूरा रामायण पूरा करते थे, लेकिन बाद में सुखदेव गोस्वामी संक्षिप्त में पूरा बता देते हैं, दो अध्याय में तीन अध्याय में पूरा रामायण को बता देते हैं। क्योंकि इससे पहले कई दफा सुनाया वाल्मीकि रामायण से पहले लिखा गया था, इसलिए उनको आज कभी भी कहा गया था। और पहले जमाने में जैसे कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोलते हैं, पहले जमाने में जो भी राजा होता था पहले राजसभा में रामायण का कथा सुनने का राजी सभी होता था। आजकल भी जब भी असेंबली वगैरह होता है रामायण कथा सुनने से आजकल जो हो रहा वो नहीं होगा, मारपीट वगैरह होता है ना, तो कहीं भी है रामायण कथा सुनने से। हम लोग मालूम होगा जब 1981 में दूरदर्शन में रामायण का कथा चला था, उसके बाद सभी सब मुसलमान है हिंदू है क्रिश्चियन है पूरे देश में सभी को राम के प्रति बड़ा अच्छा भावना आया था। उस समय दिल्ली में था न्यूज पेपर भी मैं पढ़ता था कि वो सभी उस समय तक राम अवतार राम क्या है किसी को मालूम नहीं था, सभी के सब मन में राम के प्रति भक्ति भावना आने लगा था। राम की कथा ही ऐसी है, चाहे कोई भी मनुष्य मात्र जो है उनके सब विचार आएगा सब गुण आ जाएगा और देश भाव से मुक्त हो जाए पूरा कथा सुनते सुनते रहे। तो रामायण का यही है कि आमशम से करो राजन, जो मनुष्य एक मनुष्य मनुष्य जैसा कैसा बनना चाहिए, मनुष्य कैसा रहना चाहिए, तो मनुष्य कर्तव्य क्या है वो सब सिखाता है रामायण। यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मद्भाव पुराण की जय, देश में कृपाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।